अभी हम 13वें अध्याय के आगे चालू किए हैं। 13वें अध्याय में पहले वर्षों के प्रवचन में हमने क्षेत्र और क्षेत्र के बारे में चर्चा की, फिर कल हमने ज्ञान के बारे में चर्चा की और ज्ञेय के बारे में चर्चा थी, वो लगभग पूरे होने का आ गए थे हम, अभी तक पूरी नहीं हुई थी। 13वें अध्याय के हम 17वें श्लोक तक आए थे, 18वां श्लोक हम चर्चा 18 किया था हमने कल चर्चा, नहीं ना शायद 17 हुआ था, तो 18वें से हम चालू करते हैं। तो ये जो है 18वां श्लोक जो है ये इस विभाग का अलग आखिरी श्लोक है, 19वें भी थोड़ा आता है पर वो कल उसका अंत है। तो इसमें ज्ञेय के बारे में चर्चा हो रही है, ज्ञेय मतलब जो विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसः परम उच्यते ज्योतिषाम अभी तक ज्योतिष। तो जो भी ज्योतिमान व्यक्ति है उनमें से या जो चीजें है, यहाँ पे व्यक्ति का उल्लेख नहीं आया अभी तक कुछ, जो भी चीजें है ज्योतिमान उनमें से सबसे अधिक ज्योतिमान वो परम सत्य है। अभी हम देखेंगे इस विभाग में भगवान क्योंकि उपनिषदों के विषय में चर्चा कर रहे हैं और उसी भाषा में उसी तत्व का चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए मैं जैसे बताया था कल उपनिषदों में माम ये बहुत बार नहीं आता है, माम या भगवान, भगवान के व्यक्तित्व के आगे ज्यादा वर्णन नहीं आता है, और पुराणों में आता है, खास करके भागवत पुराण में आता है। तो यहाँ पे वह ज्योतिषाम अपि तत् ज्योतिष, तो वो जो परम सत्य है वह सब ज्योतिमान चीजों में सबसे अधिक ज्योतिमान है। और क्या है, तमसः परम उच्यते, कि इस जगत में बहुत ज्योतिमान चीजें हैं पर वो भी तमोगुण से प्रभावित हो जाती है। यहाँ पे रोशनी है पर क्या है, ये रोशनी हमेशा के लिए रहने वाला है, अंधकार आ जाएगा, तमोगुण का प्रभाव आ ही जाएगा, पर वो जो परम सत्य है तमसः परम उच्यते, वो हमेशा सारे तमोगुण के परे है। और फिर ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, तीन शब्द आते हैं वो एक तरह से समान ही लग रहे हैं, थोड़ा सा फर्क है। कल हम देख रहे थे ज्ञान ज्ञेय और परिज्ञाता, आपको याद है तीन चीजें चर्चा कर रही, जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर रहा है वो ज्ञाता है, जिस चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो ज्ञेय है, और जो उस ज्ञेय से ज्ञाता के पास आ रहा है वो ज्ञान है। तो इसमें अभी तीसरा है ज्ञान गम्यम, गम्य मतलब जो गति है उद्देश्य, तो ज्ञान का उद्देश्य क्या है, ज्ञान गम्यम। तभी हम बोलेंगे कि जिस विषय के बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वही उद्देश्य है, उसमें फर्क क्या है, ऐसे नहीं है अभी कोई विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, मान लीजिए इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहा है वो, तो अभी उसका ज्ञेय जो है वो इंजीनियरिंग का ज्ञान है, पर वास्तव में उसको इंजीनियरिंग के ज्ञान से कोई प्रेम नहीं है, उसको बाद में नौकरी करनी है, पैसा कमाना है और एक अच्छा करियर बनाना है, तो उसका ज्ञान का उद्देश्य इंजीनियरिंग ज्ञान नहीं है। ज्ञान का उद्देश्य क्या है, पैसा कमाना है, नौकरी प्राप्त करना है, मतलब ज्ञान का विषय और ज्ञान का उद्देश्य ये दोनों अलग है, ज्ञान का विषय और ज्ञान का उद्देश्य दोनों अलग है। तो पर भगवान के बारे में जब ज्ञान प्राप्त करते हैं वो अलग नहीं है, भगवान ही ज्ञेय है। अभी ये सारा भौतिक जगत क्या है, भगवान की ही शक्ति है, भगवान की ही सृष्टि है, एक तरह से भगवान ही है, क्योंकि भगवान और उनके शक्ति अभिन्न है, तो जैसे वे पूरी तरह से ज्ञेय है। पर हम भगवान के बारे में ज्ञान, इस सृष्टि के बारे में ज्ञान प्राप्त करके जब हम समझते हैं कि ये भगवान ही है, तो उसके बारे में क्या करना है, उनके परे कुछ और नहीं प्राप्त करना है, वही प्राप्त करना है। मतलब परम सत्य के बारे में जब चर्चा होती है तो ज्ञान का विषय और ज्ञान का उद्देश्य दोनों एक ही है। इसीलिए प्रभुपाद जी कभी कभी जो लोग पैसा कमाने के लिए भागवत कथा करते हैं, तो वो भले ही भागवत का बहुत अच्छा अध्ययन करेंगे और बहुत भागवत श्लोक मधुरता से गाएंगे, लीलाओं का भी बहुत भावनात्मक पद से वर्णन करेंगे, तो उनको ज्ञेय भागवत के बारे में है पर उनका ज्ञान अगम्य क्या है, उनका पैसा है, पैसा नहीं होगा तो ख्याति होगा, नाम चाहिए, ये प्रसिद्धि चाहिए। तो पर जो आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या है, जो प्रामाणिकता से आध्यात्मिक का आध्यात्मिक बनना चाहते हैं उनके लिए क्या, ज्ञान ज्ञेय और ज्ञान गम्य एक है, और वो क्या है, हृदि सर्वस्य निष्ठितम, वह जो परम सत्य है वो कहीं दूर नहीं है, सबके हृदय में है। अभी अभी तक भगवान ने ये स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि वो परम सत्य क्या है, पर इसके पहले कहीं भगवान ने बताया भगवत गीता में कौन सा श्लोक है यहाँ भगवान बताते हैं कि मैं सबके हृदय में हूँ, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट। तो ये क्या है सभी तक बाद में आया है, कौन सा श्लोक 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है, अभी 13वें अध्याय में, अभी तक भगवान ने बताया नहीं स्पष्ट रूप से। पर एक और श्लोक है जहाँ पे भगवान बताते हैं कि मैं सबके हृदय में हूँ, वो भी बाद में आता है 18:61 है वो बराबर है, पर इसके पहले कहीं आया है 13वें अध्याय एक एक जगह पे आया है, कहाँ है 10वें अध्याय में, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं वदामि बुद्धियोगं तं येन मां उपयान्ति ते, इसमें मैं ज्ञान देता हूँ, इसमें ये बताया नहीं कि मैं सबके हृदय में, पर ये वो अगले श्लोक में बताया है, तेषां एवानुकम्पार्थं अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वतः आत्मभावस्थो, मैं हृदय में स्थित हूँ और वहां हृदय से मैं क्या करता हूँ ज्ञान का नाश करता हूँ और ज्ञान की ज्योति को उजागर करता हूँ। तो मतलब हम भगवद्गीता को समझने की दो पद्धतियां हैं, एक है जब हम साधारणतः हमारे प्रवचनों में समझते हैं क्या कि अच्छा ये श्लोक यहाँ से पता है, ये श्लोक यहाँ से पता है, ये श्लोक यहाँ से पता है, तो भगवद्गीता का ये संदेश है वो एक तरह से समझ सकते हैं तो वो, पर दूसरा अगर हमको ऐसे भक्ति शास्त्र का कोर्स कर रहे हैं मतलब क्या भगवद्गीता के विचार का क्या प्रवाह है, तो भगवद्गीता के विचार के प्रभाव के अनुसार हम जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं भगवान, पहले बताया है कि मैं सबके हृदय में हूँ और अब यहाँ पे बता रहे हैं वो हृदि सर्वस्य विष्टितम, वो जो परम सत्य की मैं बात कर रहा हूँ जो सब इंद्रियों के स्रोत है पर उसे कोई इंद्रिया नहीं है, ये जो बता रहा हूँ वो कौन है, वो मैं ही हूँ। इस तरह से भगवान दोनों का, अगर हम दोनों का साथ करते हैं समय आते हैं कि ये सबके हृदय में जो है वो कौन है, वो भगवान ही है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, जब उपनिषदों में परम सत्य के बारे में बात होती है तो वो परम सत्य कौन है बताते नहीं है, जैसे अगर कोई सीक्रेट सर्विस एजेंसी है ना, जिसको जैसे अमेरिका में CIA है, भारत में CID है, ऐसी कोई एजेंसी है, तो उनको किसी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति का संरक्षण करना है और वो खतरे में है, तो वो कोई प्रधानमंत्री होगा या राष्ट्रपति होगा, तो अभी जिसको खतरा है वो उसकी संरक्षण रखने के लिए क्या करेगी, वो उसका नाम नहीं बोलेगी, हाँ सो मिस्टर ABC उसका हमको सुरक्षा करनी है और वो इधर जाने वाले, वो उधर जाने वाले, उधर जाने वाले, क्या वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में, पर उसका नाम नहीं लेते, पर जो उस सर्कल में है, जो उस समाज उस समूह में है, उन सबको पता है किसके बारे में बात होगी, पर बाहर जो है उसको पता ही नहीं चलेगा कौन किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वैसे उपनिषदों में क्या जब परम सत्य की बात होती है तो स्पष्टता से बताते नहीं है कौन है ये, पर अगर हम जो उपनिषदों में गुण बताए हैं पर उस सत्य के और वहां पर बात करते हैं ये जो व्यक्ति है भारत का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, और फिर कहीं और से पता चलता है कि भारत का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, प्रधानमंत्री, तो मतलब समझ सकते हैं कि यहां से जोर लगाएगा ये प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो ठीक उसी तरह से यद्यपि यहाँ पे स्पष्ट नहीं है कि वो परम सत्य के बारे में बात कर रहे हैं, भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, पर हम इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। फिर अभी ये सारा ज्ञान बड़ा रहस्यमय है, अभी ये ज्ञान को समझेगा कैसे, वो अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं
इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं
ज्ञेयं चोक्तं समासतः
ज्ञेयं चोक्तं समासतः
मद्भक्तये तद्विज्ञाय
मद्भक्तये तद्विज्ञाय
मद्भावायोपपद्यते
मद्भावायोपपद्यते।
तो इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं, तो भगवान यहाँ पे भी समरी दे रहे, साथ दे रहे, जैसे कभी कभी कोई प्रवचन वक्ता होते हैं वो प्रवचन खत्म होने के बाद बोलते कि अभी हमने इन विषयों पर चर्चा की, तो बताते अभी हमने क्या क्या चर्चा की, इति क्षेत्रम, क्षेत्र के बारे में चर्चा की है, था ज्ञानम, ज्ञान के बारे में चर्चा की है, क्षेत्र में पहला था दूसरे से सातवें श्लोक तक, फिर वहां पर क्षेत्रज्ञ भी था पर क्षेत्र क्षेत्र के एक समान ही एक ही विभाग में चर्चा की थी, फिर ज्ञानम 8-12 में चर्चा की है और फिर 13-18 तक ग्रह के चार चर्चा, तो भगवान बोले ये तीन विषयों के बारे में चर्चा की, इति क्षेत्रम तथा ज्ञान ज्ञेयम चोक्तम समासतः, इन सबके बारे में चर्चा की होगी, और क्या है ये कौन समझ सकता है, मद भक्त एतद् विज्ञाय, ये समझना है तो क्या आपको मेरा भक्त बनना है। भक्त जब बनेंगे तो हम भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं और उनकी कृपा से हम समझ पाते हैं। और फिर अगर ऐसी कृपा हो जाएगी तो क्या होगा, समझ जाएगी तो मत भावायोपपद्यते, मत भाव की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब आप आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त कर लेंगे। मत भाव, मेरा भाव मतलब क्या है, भगवान आध्यात्मिक है। भाव इस शब्द के कई अर्थ है। भाव का एक अर्थ है भावना, और भाव का एक और अर्थ भी है अस्तित्व। अस्तित्व मतलब कि किस प्रकार का अस्तित्व, तो जैसे भव रोग आता है, भव भाव से ही आता है। मत भावायोपपद्यते मतलब इसका अर्थ होता है मेरी भावना को प्राप्त कर सकते हैं या मेरे स्वभाव को, मेरे मेरे मैं जिस स्तर पर जीवन करता, मेरे अस्तित्व को आप प्राप्त कर सकते हैं। मत भक्त एतद् विज्ञाया, मेरा भक्त ही समझ सकता है। तो भी क्या है, दुनिया के अलग अलग धर्मों के हम चर्चा करते हैं तो बाकी धर्मों में कुछ भगवान के बारे में सकारात्मक रूप ज्यादा वर्णन नहीं है। अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो बाइबल में क्या है, बाइबल के दो विभाग है, एक है ओल्ड टेस्टामेंट और दूसरा है न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट जो है वह जू धर्म के लोगों के लिए वह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ मानते हैं, और न्यू टेस्टामेंट जो है वो क्रिश्चियन लोगों के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। तो अभी अगर हम उसमें देखते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट में जो जू लोग थे जो इजिप्ट में गुलामी में थे, वहां से छूट के वो जेरूसलम तक कैसे पहुंचे और उनमें क्या क्या संकट आए और कैसे कैसे वो संकटों का सामना किया, कैसे उनको भगवान ने बचाया, इसका वर्णन आता है। तो पूरा ओल्ड टेस्टामेंट अगर कोई पढ़ेगा तो उसमें ये जो लोग है उनके जीवन में क्या क्या समस्याएं आई उसका वर्णन है। भगवान का कुछ वर्णन है ही नहीं। भगवान का क्या वर्णन है कि भगवान ने क्या चमत्कार किए। तो मान लीजिए ये लोग जा रहे थे और सामने बड़ा सागर था, शत्रु आ रहा था, तो अचानक भगवान ने क्या कर दिया, उस सागर को अलग कर दिया ताकि वो जा सके उसमें से। पर ये कौन है व्यक्ति जिसने सागर को अलग किया, उसका कुछ वर्णन नहीं। जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें क्या है, भगवान के लोगों के जीवन के बारे में बताया गया, पर भगवान के बारे में कुछ वर्णन नहीं है। अगर हम न्यू टेस्टामेंट देखते हैं जिसको बाइबल कहते हैं, तो एक्चुअली बाइबल के दोनों भाग आता है, पर कई बार से जो क्रिश्चियन लोग धार्मिक ग्रंथ उसको न्यू टेस्टामेंट को बाइबल कहते होगा। न्यू टेस्टामेंट में क्या है, उसमें जो दो चार महत्वपूर्ण किताबें हैं गॉस्पल्स कहते हैं, उसमें जीसस के जीवन का वर्णन है। जन्म ऐसे हुआ, उस यहाँ गया, फिर ये किया वो किया। और बाकी अधिकांश न्यू टेस्टामेंट जो है वह क्या है, जीसस का एक दूर का शिष्य था पॉल नाम का। पॉल ने जो पहले पहले शुरुआत के जो क्रिश्चियन थे उनको क्या उपदेश दिए, वो सब खत है, द एपिस्टल्स ऑफ पॉल कहते हैं। तो अभी इसमें भी भगवान का सकारात्मक रूप से कोई वर्णन नहीं है। अभी जीसस का वर्णन, जीसस तो भगवान के पुत्र है, उनका जीसस का वर्णन है और फिर पॉल के खत है। तो पूरे न्यू टेस्टामेंट में भी देखेंगे तो भगवान का सकारात्मक रूप से कोई वर्णन नहीं है। और अगर हम कुरान को देखते हैं तो कुरान वास्तव में क्या है, जब मोहम्मद जो था वह जब जन्म हुआ था तो उसके माता पिता तुरंत गुजर गए, तो वह अनाथ था, तो उसके दादा ने उसको संभाल के रखा। और फिर वह एक बिजनेसमैन स्त्री थी, बिजनेसमैन को क्या, बिजनेस वुमन, व्यापारी स्त्री थी, तो वह उसके उसके सेक्रेटरी के रूप में नौकरी कर रहा था। तो वो स्त्री उससे लगभग 15-16 साल से बड़ी थी, तो उन दोनों में संबंध आ गया, फिर उसका विवाह हो गया। और फिर उसके बाद में जब जीवन जी रहा था इस तरह से, जब 40 साल का था तो मोहम्मद को, तभी अचानक वो उसको लगा कि उसको आवाज सुनाई दे रही है। और फिर वो आवाज जो थी वो क्या थी, वह भगवान का एक संदेश था, अल्लाह का संदेश, गैब्रियल नाम का, उसने बोला तुम लिखो। तो मोहम्मद ने कहा मुझे कुछ लिखना नहीं आता है, वो अनपढ़ था, लिखना नहीं आता था उसको, लिखो बोला उसको। तो फिर मुझे लिखना नहीं आता, लिखो। तो फिर वो हाथ जोड़ के सुनने लग गया। तो जो उसने सुना तभी, और बाद में जब बाद में वही जो दोहराता था, जब वो दोहराता था वो बाद में लोगों ने लिखा, उसको कुरान कहते हैं। तो जो अल्लाह से गैब्रियल के माध्यम से जो इन लोगों को पता, जो मोहम्मद को मिला और फिर बाद में बताया, वह कुरान है। तो उसमें कुरान में क्या है, अधिकांश रूप से आदेश है, ऐसे करो, ऐसे मत करो, ये करो, वो मत करो। और उसके अलावा भी भगवान का सकारात्मक रूप से कोई ज्ञान है ही नहीं। तो ये तीन महत्वपूर्ण धर्म हैं दुनिया में जो है। इनमें से भी जो सबसे ज्यादा लोग हैं क्रिश्चियन है, उसके बाद मुस्लिम है, उसके बाद में हिंदू है, बुद्ध है, और फिर ज्यू है। ज्यू काफी कम संख्या में। अभी बुद्ध धर्म में तो भगवान को मानते ही नहीं है। जब बुद्ध को पूछा गया था कि भगवान के बारे में भगवान है या नहीं, भगवान के बारे में कुछ बताओ, तो बोले वो भगवान के बारे में विचार मत करो, आप सिर्फ सच आप पहले अच्छी तरह से जियो, बाद में भगवान के बारे में बात करो। तो इसीलिए देखते हैं सारे विश्व के धर्मों में भगवान के बारे में सकारात्मक रूप से कुछ ज्ञान है ही नहीं। अभी ये सब धर्मों के लिए ये बहुत ही समस्या की बात होगी। आप बोल रहे हैं कि हम भगवान के पास जाएंगे, भगवान से ही ये धर्म आए हैं, और भगवान के बारे में कुछ ज्ञान है ही नहीं, तो फिर क्या करते हैं? तो ये धर्म लोग, खासकर क्रिश्चियन धर्म के लोग कहते हैं कि भगवान इतने विशाल है, भगवान इतने असीमित है कि हम उनके बारे में ज्ञान प्राप्ति नहीं कर सकते। और क्योंकि भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना असंभव है हमारे लिए, इसीलिए शास्त्रों में भगवान के बारे में ज्ञान नहीं दिया है। इस तरह से वो जो अब उनके धर्मों, उनके शास्त्रों में जो भगवान के बारे में ज्ञान है नहीं, उसके कमी को वो समझाने का प्रयास करते हैं। तो वास्तव में ये सत्य है कि भगवान असीमित है और हम सीमित है, इसीलिए हम भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। पर यह हम हमारी दृष्टि देखे तो फिर भी हम भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते। इस तरह से कोई बोल सकता है हम सीमित है, भगवान असीमित है, तो फिर हम भगवान के बारे में ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उनकी कृपा से, उनकी कृपा से। सही, तो क्या है वो, हम सीमित के पास कभी शक्ति नहीं हो सकती कि वो असीमित को समझ सके, पर असीमित के पास वो शक्ति है कि वो कुछ भी कर सकता है। और कुछ भी कर सकता है इसका मतलब है वो सीमित को भी अपना ज्ञान दे सकता है। तो ये भगवान की शक्ति है। तो भक्त साधन ठाकुर उदाहरण देते हैं कि कोई व्यक्ति कहता है साधारण मानव सूर्य उग जाओ, मुझे तुम्हें देखना है, तो फिर वह आदेश दे के सूरज को उगा नहीं सकता है। पर भले ही उस व्यक्ति में कोई आशक्ति नहीं सूरज को उगाने की और स्वयं सूरज को देखने की, पर सूरज जब उग जाता है, जब वो दर्शन देता है, तो व्यक्ति असाधारणता से देख सकता है। तो जो हमारी शक्ति में नहीं है वो भगवान की शक्ति में है। पिलाई लोकाचार्य जो श्री संप्रदाय में एक महत्वपूर्ण आचार्य थे, वो उदाहरण देते हैं सही, बोले एक छोटा बालक है, अगर वो सोचता है कि मुझे हाथी के सिर को छूना है, तो कितना भी प्रयास करेगा वो हाथी के सिर को छू नहीं सकता है। पर अगर वो हाथी सोचता है कि मुझे इस बालक की इच्छा पूरी करनी, तो वो क्या होता है, हाथी नीचे बैठ जाता है और अपना सिर सामने करता है, फिर वो बालक आसानी से सिर को छू सकता है। तो वो तो इसी तरह से वो कहते हैं कि जो आत्मा जीवात्मा है वो छोटे बालक के समान है, और भगवान जो विभू है, अनंत है, और भगवान की असीमित कृपा है कि वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। एक तरह से वह शास्त्रों से अपना ज्ञान देते हैं। पिलाई लोकाचार्य ये उदाहरण विशेषता विग्रहों के लिए देते हैं, कैसे वह असीमित भगवान है, वो एक सीमित विग्रह, सीमित लगने वाले विग्रह में प्रकट हो जाते हैं। तो ये सब कैसे संभव है? उनकी कृपा से। और उनकी कृपा में कब प्राप्त होती है? जब हम उनकी भक्ति करते हैं। इसलिए यहां पर बताया गया मद भक्तये तद विज्ञाया मद भावायोपपद्यते मत भक्त एतद् विज्ञाया, मेरा भक्त ही समझ सकता है और कोई समझ नहीं सकता है।
और यहाँ पे मत भक्त, ये भक्त जो शब्द है, क्योंकि अब तक जो ज्ञान दिया है भगवान ने वो ज्ञानी मार्ग के लिए, ज्ञानियों के, तो यहाँ पे मत भक्त का मतलब वो ज्ञानी भी थोड़ी बहुत भक्ति जो करता है उसको
बराबर है। क्या है यहाँ पे भक्त का संदर्भ किससे आ रहा है? यहाँ पे ज्ञानी लोग भले ही भक्ति करके भगवान की प्राप्ति नहीं करना चाहते, भले ही उनको ज्ञान मार्ग का पालन करके ब्राह्मण का ज्ञान प्राप्त करना है, निर्विशेष ज्ञान प्राप्त करना है, उसके लिए भी उन्हें भक्ति करनी ही चाहिए। इसीलिए हम देखते पहले भी 13 से 13 अध्याय 8 से 12 श्लोक में जब ज्ञान के 20 चीजें बताई गई थी, तभी भी मई जानन्य योगेन भक्तिरव्य विचारिणी भक्ति का वर्णन आया था। तो वो यहाँ पे कोई बोले वो क्या 20 चीजों में से एक ही चीज बताया भक्ति के बारे, इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है, पर यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है। अगर ये सब समझना है आपको, मत भक्त तद विज्ञाया, तो मतलब विश्वनाथ जी ठाकुर अपने तात्पर्य में लिखते हैं स्पष्ट तौर से कि कोई भी मार्ग क्यों ना हो, अगर वह मार्ग हमको परिपूर्णता तक लेके जाना है, उस मार्ग की परिपूर्णता क्यों ना हो, तो उसमें भी भक्ति का थोड़ा अवलंबन होना चाहिए। भक्ति के बिना कोई यश प्राप्त नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं अष्टांग योग में भी क्या है, एक अंग है ईश्वर परिधान। तो यम और नियम जो है आठ अंग है, उसमें से दो है यम और नियम, तो उनमें से उनके जो अंग है उसमें से एक है ईश्वर परिधान, ईश्वर को शरण जाना। तो सब मार्गों में भक्ति का अवलंबन आवश्यक है, पर भक्ति में भक्ति भक्ति मार्ग में हमसे भक्ति को एक औजार के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं, भक्ति को शाश्वत सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। तो बाकी मार्गों में हमको स्वीकार करना पड़ता है भक्ति, भक्ति के मदद के बिना कोई भी यश प्राप्त नहीं कर सकता है।
जैसा आपने बताया ये मद भक्त ज्ञानी को भी लाभ होता है, लेकिन आगे श्लोक में बताया गया मद भाव उपपद्य थे, मतलब लटे माय नेचर, मतलब ये तो भक्ति के बारे में है, तो ज्ञानी का संबंध कैसा है?
हाँ, मद भाव उपपद्य थे, इसलिए लगा था मद भाव, भाव का आप थे, मतलब भाव के दो अर्थ हो सकते हैं, एक है भावना, दूसरा आप आए थे ना क्या बाद में, मैं स्पष्ट रूप से बताया भाव का दो अर्थ होता है कि मेरा अस्तित्व, मेरा स्वभाव या मेरी भावना। तो मद भाव जो बोलते हैं तो यही भाव ही शब्द आता है चौथे अध्याय के दसवें श्लोक में, वीतराग भय क्रोध मन्मया माम पाश्रितः भावो ज्ञान तपसा भूता मद भावमागतः। तो वहां पे मद भाव उस तात्पर्य प्रभुपाद जी देते हैं कि वो जो भक्ति के नौ स्तर है आदव श्रद्धा था, उसमें भाव के बारे में वर्णन करते हैं। तो अगर भाव का अर्थ हम वो लेते हैं तो अर्थ होता है भावना, और फिर मद भाव मतलब मेरी भावना, मेरे प्रति प्रेम प्राप्त होता है। पर अगर हम भक्त वही देखते कि भाव का अर्थ एक जगह पे अस्तित्व या स्वभाव भी होता है, आठवें अध्याय में तीसरे शब्द में तीसरे चौथे शब्द भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत, तो भूत भाव उद्भव करो। तो इस भौतिक जगत की जो सृष्टि है, भौतिक जगत में जो सृष्टि करवाता है वह कर्म है। तो भाव का अर्थ वहां पे सृष्टि स्वभाव या प्रकृति या अस्तित्व भी होता है। हाँ, वो भाव बराबर है, जो भाव वहां पे क्या है नहीं, तसदा तद भाव भाविता, पहला भाव वहां पे भावना है, यम यम वापि स्मरण भावम, जो भाव आपका है, जो चेतना आपकी है, पर सदा तद भाव भाविता, उसी प्रकार जिस जैसी हमारी भावना है वैसे हमारा अस्तित्व हो जाएगा, सदा तद भाव भाविता। तो वो अच्छा श्लोक, इसमें दोनों अर्थ आते हैं एक साथ में। तो अभी इसके बाद में भगवान पुरुष और प्रकृति के बारे में चर्चा करें, 20 से लगभग 26-27 तक वे पुरुष और प्रकृति के बारे में चर्चा करते हैं। तो अभी वह प्रकृति के बारे में पहले उसका परिचय करेंगे।
प्रकृतिं पुरुषं चैव
विद्यनादिभावपि
विकारांशगुणांश्चैव
विद्धि प्रकृति संभवान।
तो प्रकृति पुरुषं चैव, प्रकृति और पुरुष ये दोनों क्या है आप जान लो कि अनादि भाव भी, दोनों उभाव मतलब दोनों क्या है, दोनों अनादि है, दोनों की कोई शुरुआत नहीं है। और विकारांश गुणांश चैव, तो इस प्रकृति में जो इस भौतिक जगत में जो विकार परिवर्तन हो रहे हैं वो जो गुण प्रकट होते हैं अलग, वो किससे आ रहे हैं, प्रकृति से आ रहे हैं। विधि प्रकृति संभवान, संभव मतलब उसे प्रकट हो रहे हैं। तो यहां पर एक महत्वपूर्ण सवाल आता है कि किस तरह से अगर भगवान हमारे स्रोत है, हम कई बार कहते हैं कि हम सब भगवान से आए हैं, पर हम यह भी कहते हैं कि आत्मा सनातन है। तो अगर आत्मा सनातन है तो फिर आत्मा भगवान से कैसे आया है, तो दोनों थोड़ा विरोधाभास लगता है। अगर हम भगवान से आए हैं मतलब एक समय हम नहीं थे उसके बाद में हम आए, मतलब भगवान ने हमारी सृष्टि की, तो उसका मतलब है कि हम सनातन नहीं है। तो एक उसमें सत्य क्या है कि हम क्या हम सनातन है या भगवान ने किसी पर समय पे हमको बनाया है। तो वास्तव में यह जो है हमारा वैदिक शास्त्रों का तत्व ज्ञान यह है कि आत्मा भी सनातन है। कुछ लोग बोल सकता है इसमें आत्मा सनातन है, इसके बारे में वर्णन आता है, हाँ जीव लोग सो जीवलोके जीव भूता सनातनः हमेशा के लिए है। और ऐसे ही तो ये 15 अध्याय 17 श्लोक है। और बिल्कुल शुरुआत में भगवद्गीता की भगवान वही बोलते हैं, न त्वेवाहं जातु नासं त्वं मे मेदनादि। वहां पे भविष्य वर्तमान और पूर्व तीनों के बारे में बताया कि हमेशा आप सब रहोगे, मैं भी रहूंगा। तो मतलब भगवद्गीता में स्पष्ट रूप से बताया है कि आत्मा सनातन है। पर कुछ लोग पता है आपको जो उसमें कहते हैं कि आत्मा भगवान से आता है, ये सब कुछ भगवान से आता है, क्या सब कुछ भगवान से आता है। एतद् योनिनि भूतानि जो श्लोक है 7वें अध्याय 6वां श्लोक, उसका अर्थ वास्तव में क्या है कि इस भौतिक जगत में आपको जो भी दिखाई दे रहा है वह भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति का संगम से बनाया गया, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो उसमें खास करके सब कुछ भगवान से आ रहा है वर्णन नहीं है। तो यह भी वर्णन आता है कि अहम सर्वस्य प्रभवो है। तो वैसे ही उपनिषद में आता है कि एको बहुस्याम, जो एक था वह अनेक हो गए। तो मतलब दोनों चीजें शास्त्र में बताई है, एक है कि आत्मा सनातन है और दूसरा है कि आत्मा भगवान से आ रहा है। तो वास्तव में सत्य क्या है, तो इसमें क्या है कि एक है इसको इंग्लिश में पहले बताता हूं मैं, मुझे हिंदी में शब्द पता नहीं है, हिंदी में शब्द होगा ही तो वो शब्द समझ भी नहीं आएगा। इसको एक्चुअली इंग्लिश में क्रोनोलॉजी और ऑन्टोलॉजी कहते हैं। क्रोनोलॉजी मतलब क्या कि समय के अनुसार इस समय यह हुआ, जैसे 1966 में प्रभु बाजी अमेरिका गए, 1966 में इस्कॉन की स्थापना हुई, 1968 में पहली रथ यात्रा हुई, 1969 में बीबीटी की स्थापना हुई, ऐसे ये क्रोनोलॉजी मतलब क्या क्या प्रसंग कब हुए, मतलब समय के अनुसार जो होता है उसको क्रोनोलॉजी कहते हैं, कैसे क्या हुआ। ऑन्टोलॉजी मतलब अस्तित्व का स्वभाव, किस प्रकार से अस्तित्व होता है। तो जब हम बात करते हैं कि आत्मा सनातन है तो वह अस्तित्व के स्वभाव के अनुसार है, अस्तित्व के स्वभाव के अनुसार क्या आत्मा सनातन है, आत्मा की कभी कभी शुरुआत नहीं होती है। पर आत्मा और भगवान का संबंध जो बताना है तो संबंध बताने के लिए क्या है कि आत्मा भी सनातन है भगवान भी सनातन है, पर आत्मा स्वतंत्र नहीं है, केवल भगवान स्वतंत्र है और आत्मा भगवान पे निर्भर है। तो आत्मा की निर्भर अवस्था को समझाने के लिए ऐसे बताया जाता है कि आत्मा जो है भगवान से आया है। तो जो आत्मा भगवान से आया है वो बताया गया है, इट इज नॉट इन अ क्रोनोलॉजिकल सेंस, इट इज इन ऑन्टोलॉजिकल सेंस। ऐसे नहीं है कि एक समय आत्मा नहीं था फिर आत्मा आ गया, नहीं आत्मा हमेशा था, पर जो अस्तित्व का स्वभाव है क्या कि आत्मा ये परतंत्र सत्य है। द सोल इज नॉट अ इंडिपेंडेंट रियालिटी, ओनली कृष्णा इज इंडिपेंडेंट रियालिटी। आत्मा ये परतंत्र सत्य है, आत्मा का अस्तित्व परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है, यह समझाने के लिए से बताते हैं कि आत्मा भगवान से आ रहा है। तो इसीलिए द स्टेटमेंट द सोल हैज कम फ्रॉम गॉड इज अ मेटाफोरिकल स्टेटमेंट टू कन्वे द रिलेशनशिप बिटवीन द टू। इट इज नॉट अ क्रोनोलॉजिकल स्टेटमेंट अबाउट देयर और हाउ दे ओरिजिनेटेड। तो ये क्या है, एक प्रतीकात्मक रूप से बताया है। प्रतीकात्मक रूप से कई बार शास्त्रों में इस्तेमाल होता है, कोई ऐसे आपको पता है भगवद्गीता में श्लोक जो प्रतीकात्मक रूप से है, जो अगर हम उसको सीधा सीधा लेंगे तो कुछ अर्थ ही नहीं निकलेगा उस श्लोक का। प्रतीकात्मक रूप से कोई श्लोक है भगवद्गीता में, नहीं वो तो सत्य है ना कि आप उदाहरण देखो प्रतीक और उदाहरण लगे, उदाहरण मतलब क्या ये एक सत्य है और उसको समझाने के लिए दूसरा एक उदाहरण दे, वो उदाहरण है वो भी उदाहरण है। देखो उदाहरण मतलब क्या कि एक सत्य है और वो सत्य 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 ही है, पर सत्य को समझाने के लिए कोई और चीज बताई जाती है, पर यहाँ पे सत्य है ही नहीं, वो एक चीज बताई जा रही है कि दूसरा ही कुछ सत्य है समझाने के लिए, वो है 2वें अध्याय का 69वां श्लोक, यानिशा सर्वभूतानां अस्याम जागृति संयमि यस्याम जागृति भूतानि सानिशा पश्यतो मुनेः। जो साधारण लोगों के लिए रात है वो आध्यात्मिक वादियों के लिए दिन है, और जो आध्यात्मिक वादियों के लिए रात है वो बाकी सब लोगों के लिए दिन है। अभी रात और दिन तो सूरज के उगने से और सूरज के अस्त से होता है, तो फिर सीधा सीधा देखिए तो शब्द का कोई अर्थ है ही नहीं इस श्लोक का। पर अर्थ क्या है, रात मतलब यहाँ पे अर्थ है कि जब कोई कार्य नहीं कर रहा है, इसमें कोई कार्यहीन हो जाता है व्यक्ति, और दिन मतलब जो कार्यशील होता है उस समय। तो इस श्लोक का अर्थ क्या है कि जो भौतिक चीजें हैं उसमें भौतिकवादी लोग बहुत कार्यशील होते हैं, पर आध्यात्मिक लोग कार्यशील नहीं होते, तो ये प्रतीकात्मक है। उसी तरह से एक और प्रतीकात्मक आता है कि 16वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, जब काम क्रोध लोक के बारे में बताया 16वें अध्याय 21 श्लोक में, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः, कह रहे हैं कि ये तीन चीजें जो है आत्मा का नाश करते हैं। अभी ये तो शुरुआत में दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ने क्या बताया है, अविनाशी तु तद्विद्धि, अविनाशी आत्मा अविनाशी है। तो यहाँ पे द्वारम नाशनम आत्मा कैसे बताया है कि आत्मा का नाश होता है, तो आत्मा का नाश क्या है, ये प्रतीकात्मक है। मतलब क्या है, आत्मा के आध्यात्मिक प्रवृत्ति का, आत्मा के आध्यात्मिक प्रगति का नाश होता है। और यही ईशो शब्द में आता है तीसरे श्लोक में, ये के चात्महनो जनहा, वे लोग आत्मा को मार डालते हैं। प्रभुपाद जी बोलते किलर्स ऑफ द सोल। तभी यह एक मूलभूत तत्व है कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, नहीं छिंदन से अस्त्राणी बता रहे भगवान। तो क्या है, ये प्रतीकात्मक है। ठीक, इसी तरह से क्या है कि जब हम कहते हैं कि आत्मा भगवान से आता है, वह प्रतीकात्मक है। स्पष्ट है, यस, वो प्रतीकात्मक है। जैसे कि चैतन्य चैतन्य की शुरुआत में बताते हैं कि एक बार भगवान की इच्छा करे गोपियां इतना आनंद दे रही, मुझसे ज्यादा आनंद दे रही है, इसीलिए मुझे उनका आनंद स्वाद करना है, इसीलिए मैं उन गोपियों के रूप में आ जाऊंगा, उनका भाव स्वीकार करके, और उनका रूप स्वीकार करके, आधा भाव सुमिलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, चैतन्य चैतन्य वर्णन आता है। तो फिर कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। तो क्या इसका मतलब एक समय ऐसा था चैतन्य महाप्रभु थे नहीं, सनातन है, पर वो भाव का रहस्य समझाने के लिए ऐसा उदाहरण दिया जाता है। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में जिसे हम समय कहते हैं, उस प्रकार का समय है, समय अलग पद्धति से है हमारे। तो जब इस तरह से बोलते हैं कि ये चीज इस चीज से आई, तो वो सिर्फ हमारे उनका संबंध समझाने के लिए हमें बताया गया, उनके अस्तित्व के स्रोत के बारे में वर्णन नहीं हो रहा है। इसे यहाँ पे क्या है, भगवान बता रहे हैं कि दोनों अनादि है, प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है, दोनों की कोई शुरुआत नहीं है, और उनमें से यहाँ पर जो भी परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन किसमें हो रहा है, वो परिवर्तन प्रकृति में हो रहा है। तो अभी प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है मतलब क्या, कभी गर्मी होती है, कभी ठंडी होती है, कभी बारिश होती है, कभी सूखा होता है, यह बाह्य रूप से अंतरंग से, कभी हम प्रसन्न होते हैं, कभी हम क्रोध हो जाते हैं, कभी हम हताश हो जाते हैं, ये सब क्या है, प्रकृति में परिवर्तन हो रहे हैं। तो स्थूल शरीर में परिवर्तन हो सकता है या स्थूल या सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन हो सकता है, ये सब परिवर्तन कहाँ से हो रहे, प्रकृति संभवान। तो अभी अगले श्लोक में बताया गया ये जो परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन का और प्रभाव क्या होता है, कार्य कारण कर्तृत्व, हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखानां, भोक्तृत्व हेतु रुच्यते, पुरुष सॉरी कार्य कारण कर्तृत्व। तो ये थोड़ा श्लोक है ना, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा विचित्र श्लोक है। वास्तव में 8वें स्कंद में बिल्कुल ऐसा ही श्लोक है भागवत के, दो श्लोक है भगवत गीता के जो बिल्कुल लगभग वैसे के वैसे भागवत में आते हैं। ये एक है कार्य कारण कर्तृत्व, और 9वें स्कंद का एक आखिरी श्लोक आता है वो बिल्कुल ऐसे ही, यदा यदा ही धर्मस्य परित्राणाय साधुनां, वैसे ही श्लोक वहां पर भी आता है। तो लगभग वो 80-90% एक ही समान, थोड़ा सा कुछ अलग है उसमें। पावर कॉर्ड यहाँ पे बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, वही यहाँ पे
पीछे
कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते। तो यहां पे क्या बताया जा रहा है कि पहले श्लोक से श्लोक में बताया कि भौतिक जगत में जो भी परिवर्तन हो रहा है वह क्यों हो रहा है, वह प्रकृति के कारण हो रहा है। चलो दोस्तों, चलो, यस। थैंक यू। कार्य कारण कर्तृत्व, तो क्या है कि यहाँ पे कार्य और कारण, अभी कारण ये शब्द हिंदी में आता है, इसके कारण मैंने वो ऐसा किया, वो कारण यहाँ पे नहीं है। संस्कृत में कारण का अर्थ थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पे कार्य और कारण का क्या अर्थ है कि प्रोपाजे एफेक्ट, कार्य मतलब प्रभाव परिणाम, और कारण मतलब उसका ट्रांसलेट कॉज, मतलब हिंदी में कारण होता है, पर एग्जैक्टली क्या है वो अर्थ उसका देखो। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, मतलब क्या कि भौतिक जगत में परिवर्तन हो रहा है। मान लीजिए मैंने इसे को मारा, ऐसे तो क्या हुआ, मैंने इसको मारा, इस पे मारा, ये कार्य हो गया, तो उसका कुछ प्रभाव क्या हुआ, उसका प्रभाव एक आवाज आ गया। तो इस भौतिक जगत में कुछ कार्य होते हैं और कुछ प्रभाव होता है। तो यह सब परिवर्तन जो होता है वह परिवर्तन भौतिक प्रकृति में हो रहा है। अभी मैंने इसको मारा तो इसे आपको आश्चर्य, वैसे क्यों मारा उसने, पर यही मैं लेके अभी मान लीजिए यहाँ पे ब्रजमोहन रोग को थप्पड़ मारता, तो क्या होगा, पुरुष सुख दुखाना भोक्तृत्व, तो क्या होता है, तो क्योंकि हमें भोक्तृत्व भोग करने की इच्छा होती है, हमें कुछ चीजों से आसक्ति है, और क्योंकि उन चीजों से हम आसक्त होने की अगर हमारी भावना है उसमें जाती है, इसीलिए उन चीजों को कुछ होता है तो फिर सुख और दुख होता है। अगर इसको मारेंगे तो कोई सुख दुख नहीं होगा, पर किसी के गाल में मारेंगे तो बड़ा सुख दुख हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, एक तरह से भौतिक चीज वही हो रहा है, एक हाथ जाके किसी और चीज को लग रहा है, पर उसमें बहुत फर्क है। तो जो भौतिक स्तर पर परिवर्तन हो रहे हैं वो प्रकृति के कारण हो रहे हैं, पर उन परिवर्तनों के कारण जो प्रभाव होता है किसी में, वो क्यों है, उसके आसक्ति के अनुसार है। अगर अभी भारत में किसी को बेसबॉल क्या है पता ही नहीं है, जैसे भारत में लोग क्रिकेट के पीछे पागल होते हैं, वैसे अमेरिका में लोग बेसबॉल के पीछे पागल होते हैं। तो अभी बेसबॉल में एक टीम हार गई, दूसरी टीम जीत गई, तो अमेरिका में इतना उसके बारे में सेलिब्रेशन होता है या विलाप होता है। कभी कोई टीम हार जाती है तो क्या, लोग इतना गुस्सा होते स्टेडियम को जला देते हो, इतना गुस्सा हो जाते हैं कभी कभी। तो अभी यहाँ पे पिछले साल श्रीलंका, क्या है, श्रीलंका की टीम 5 बार कोई टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई और 5 बार फाइनल में हार गई, और ये 5वीं बार जब तो श्रीलंका के जो क्रिकेट के लोकप्रिय क्रिकेट के फैंस, व्हाट इज फैंस,
चहेते,
ठीक है, क्रिकेट चहेते, एलिगेंट चहेते। तो क्रिकेट के प्रेमी जो है, क्रिकेट के फैंस है, तो वो आखिर जो मैच था जो श्रीलंका में ही हुआ था उसका फाइनल, तो उसमें लग रहा था श्रीलंका जीत जाएगी, और जब वो श्रीलंका हार गई तो वो इतने हताश हो गए कि वहां पे 6 क्रिकेट फैंस ने आत्महत्या कर ली। क्या किया, और श्रीलंका का इतना अमीर भी देश नहीं, तो क्या किया है, वो ही स्टेडियम के बाहर कोई पेड़ था, पेड़ पे 6 लोगों ने साथ में अपने गले को रस्सी बांध के खाता कर हम साथ में क्रिकेट देखते गए, साथ में क्रिकेट में दुख करके मृत्यु भी कर गए। तो अभी क्या है, अभी क्रिकेट ग्राउंड में जो हो गया उससे हो गया, अभी उसमें इतनी भावनाएं क्यों आ गई। तो अभी क्रिकेट ग्राउंड में जो हुआ ना, किसी ने गेंद डाला, किसी ने उसको बैट से मारा, वो क्या है, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति, वो भौतिक प्रकृति का परिवर्तन हो रहा है। पर क्या है, पुरुष सुख दुख का ना भोक्तृत्व हेतु रुचते, जब भोग करने की भावना है तो फिर क्या होता है, किसी को इतना सुख होता है इतना दुख होता है। तो जब भारत में तीन चार से जब वर्ल्ड कप जीता था, बॉम्बे में हुआ था, तो वो पूरे विश्व के इतिहास में वो जो दिन था, वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद किसी एक दिन में इतना शराब का सेल दुनिया में कहीं नहीं हुआ। तो उसके बाद तो इतने लोगों ने शराब पिया और इतना सेलिब्रेशन किया। तो क्या, एक जीत गए, तो क्या है, तो यह है आसक्ति के कारण हमें सुख और दुख होता है। तो इसलिए भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि भौतिक प्रकृति जो है उसमें परिवर्तन तो हो गए, पर वो परिवर्तन के कारण हमें प्रभाव कब होगा, जब हमें भोग करने की भावना है। भोग करने की भावना है नहीं है तो प्रभाव नहीं होगा। और जो भोक्तृत्व है उसका वर्णन अभी और अगले श्लोक में करते हैं। पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंते प्रकृति जान गुणान कारणं गुणसंगोस्य सदसद्योनिजन्मसु तो पुरुषः प्रकृतिस्थो ही। ये पुरुष और प्रकृति जो है ये वास्तव में दोनों बिल्कुल अलग है। पुरुष सचेतन है, प्रकृति जो है अचेतन है, तो उनमें वास्तव में कोई साम्य नहीं है। पर ये पुरुषः प्रकृतिस्थो ही, ये पुरुष प्रकृति में क्यों चला जाता है उसमें, भूमते प्रकृति जान गुणान, भोग करने की इच्छा के कारण वह उसकी चेतना किस में चले जाती है, प्रकृति में चले जाती है। प्रकृति में कैसे जाती है, भूमते प्रकृति जान गुणान, जो प्रकृति से जन्म हुए हैं गुण जन्म हुए हैं। अभी देखिए कभी आप कोई टीवी देख रहे हैं या अभी कोई कंप्यूटर देख रहे हैं, तो कंप्यूटर में कभी क्या होता है खराब हो गया तो फिर वो कोई ब्लू स्क्रीन आता है, या अगर आप पहले टीवी देख रहे होते तो वो इंटरप्शन आता है, कुछ आता ही नहीं, सॉरी फॉर इंटरप्शन करने से आता है, या फिर स्पॉट 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 आता है, कुछ आता ही नहीं वहाँ पे। तो क्या होता है जब वो स्पॉट्स, जब सिर्फ ऐसे व्हाट इज स्पॉट्स, सिर्फ ऐसे स्पॉट्स आपको समझता है सबको, तो जब ऐसे सब स्पॉट्स आ रहे हैं तो तभी क्या है उसमें कोई आकर्षण नहीं है। हम अभी वास्तव में हमेशा टीवी पे वो स्पॉट्स ही आते हैं और कुछ आता ही नहीं है। पर वो क्या है, वो जो स्पॉट्स आते हैं वो जब अलग अलग रंग के स्पॉट्स आते हैं और अलग अलग पद्धति से आते हैं तो उससे कुछ रूप प्रकट हो जाते हैं, और जब वो रूप प्रकट हो जाते हैं तो उससे कुछ आकर्षण होता है। तो हमेशा क्या हो रहा है, वो सिर्फ स्पॉट्स ही आ रहे हैं पर जब वो स्पॉट्स किसी रूप में आ जाते हैं तो उसमें आकर्षण होता है। तो घूमते प्रकृति जान गुणान, तो सब कुछ प्रकृति ही है पर जब प्रकृति गुणों के संगम के कारण कुछ अलग अलग रूपों में आती है, अलग अलग रंगों में आ जाती है, अलग अलग गंधों में आ जाती है, तो क्या होते हैं वो बहुत आकर्षक बन जाते हैं, प्रकृति जान गुणान। और फिर क्या है, कारणम गुण संगोस्य, तो गुण संग, गुण से आसक्त हो गया व्यक्ति, न सत असत योनि जन्मसु, क्योंकि गुणों से आसक्त हो जाता है व्यक्ति, उसके अनुसार भोग करने का प्रयास करता है, तो सत असत योनि, अच्छे योनियों में या बुरे योनियों में जन्म होता है। तो यहाँ पे भगवान, जब अर्जुन ने पूछा कि पुरुष क्या है प्रकृति क्या है, तो भगवान ने पहले बता दिया कि दोनों अनादि है, पर महत्वपूर्ण सवाल क्या आता है कि ये पुरुष जो है प्रकृति में बंध कैसे गया, तो बोले भोक्तृत्वे, भोग के कारण, भोग करने की जब इच्छा होती है तो उसके कारण वह प्रकृति में जो भी परिवर्तन होता है उससे बहुत प्रभावित हो जाता है, और उससे न केवल तभी सुख दुख होता है पर उससे उसकी मानसिकता भी वैसे विकसित हो जाती है। मतलब अगर व्यक्ति किसी भौतिकवादी व्यक्ति है, वह पुरुष स्त्री से आसक्त हो जाता है बहुत, तो फिर क्या होता है, वो स्त्री के बारे में चिंतन करते रहता है, फिर उसके अनुसार उस अगले जन्म में उस प्रकार का शरीर मिल जाएगा उसको, तो न केवल तभी सुख दुख मिलता है पर उसके बाद में अगले जन्म में भी वैसे ही हो जाता है। पुरुष प्रकृतिस्थो ही, इस तरह से पुरुष जो है प्रकृति में चला जाता है। तो अभी हमारे आचार्य कहते हैं कि यह जो वाक्य है, ये जो श्लोक है 13-22, यह संपूर्ण ये अगले 6 अध्यायों का बीज वाक्य है, बीज श्लोक है। ये क्या है कि इस श्लोक से जीवात्मा के भवबंधन के बारे में वर्णन आ रहा है। और अभी कैसे होता है, अभी कोई बीज होता है, बीज से वृक्ष आता है, तो 15वें अध्याय में एक वृक्ष का वर्णन आएगा, ऊर्ध्वमूलं तथा शाखं अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्, बताएगा कि एक ऐसा वृक्ष है जिसके जो शाखाएं हैं वो नीचे हैं, जिसके मूल ऊपर हैं, तो वो जो क्या है वो भौतिक अस्तित्व का एक प्रतीकात्मक रूप से वृक्ष के रूप में बताया गया है। तो वो जो वृक्ष है, वह वृक्ष शुरुआत कैसी होती है उसकी, वृक्ष हर एक वृक्ष शुरुआत बीज से होती है, तो वो बीज क्या है, ये बीज है। तो भोग करने की प्रवृत्ति जो है वो बीज है जिसे सारे वृक्ष की निर्मिति होती है, और फिर इस वृक्ष के उस वृक्ष में जब वृक्ष उत्पन्न हो जाता है, बीज पर्याप्त नहीं, उसके बाद में उसको जल चाहिए, जल से क्या होता है वो वृक्ष बढ़ता है, तो उसी गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बोलते हैं कि गुण जो है गुणों से इसकी वृद्धि होती है। तो ये जो वृक्ष है उसका बीज यहाँ पे बताया गया है, वृक्ष 15वें अध्याय में बताया है, 14वें अध्याय में वो वृक्ष कैसे वृद्धि होती है वो बताया है। 14वां अध्याय क्या है? प्रकृति के तीन गुण, प्रकृति त्रिगुण विभाग योग उसको बोलते हैं। और फिर अभी ये वृक्ष है, वृक्ष के ऊपर के भाग है, नीचे का भाग है। तो वृक्ष का ऊपर का भाग जो है वो क्या है? वो दैवी लोक है, और जो नीचे का भाग है वो असुरी लोक है। ये दैवी प्रकृति है, असुरी प्रकृति है, वो 16वें अध्याय में बताया है। और फिर 17वें अध्याय की शुरुआत अगर आप देखते हैं तो क्या है, वह 17वें अध्याय में अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, जो दैवी प्रकृति के भी लोग नहीं है और असुरी प्रकृति के भी लोग नहीं है, उनका कैसे, उनका क्या गति होती है? ये शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते श्रद्धयान्विता, श्रद्धयान्विता ये अलग है, तो अलग श्लोक है। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम करता, ये 16वें अध्याय का 22वां श्लोक है। वो तो भगवान ने स्पष्ट बताया कि असुरी लोग है, पर अर्जुन 17वें अध्याय के पहले श्लोक में पूछते हैं यह ये शास्त्र विधि उत्सृज्य, शास्त्र का पालन नहीं करते पर वर्तते श्रद्धयान्विता, पर श्रद्धा से वर्तन कर रहे, तो उनकी क्या गति होगी? मतलब अर्जुन ये वृक्ष के बीच में जो लोग हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप समझ रहे कैसे ये विकास हो रहा है? जो एक वृक्ष है, वृक्ष के बीच का वर्णन 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में हुआ, फिर वो वृक्ष का वर्णन 15वें अध्याय में आता है। तो वृक्ष को बढ़ने के लिए पानी लगता है वो तीन गुण है, उसका वर्णन 14वें अध्याय में आता है। तो वृक्ष का ऊपर का भाग जो है वो दैवी प्रकृति, नीचे का भाग असुरी प्रकृति, वह 16वें अध्याय में वर्णन आता है। और फिर उसके जो बीच में भाग है, जो लोग दैवी भी नहीं है असुरी भी नहीं है, उसके बीच में है, उसका उन लोगों का वर्णन जो है 17वें अध्याय में आता है। और अंत में इस सारे वृक्ष से बाहर कैसे निकलना है और कैसे भवन से निकलना है बाहर, वह 18वें अध्याय में आता है। 18वें अध्याय का शीर्षक क्या है? मोक्ष संन्यास योग, परफेक्शन ऑफ रेनसिएंट बोलते हैं। तो इस तरह से यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे इस अध्याय के पूरे आखिरी 6 अध्यायों के विचारों का जो प्रवाह है वो समझने के लिए। तो अभी इसके बाद में भगवान बताएंगे कि यह एक पुरुष तो हो गया जो क्या है, भोक्तृ पुरुष, भुंगते जो भोग करने की इच्छा से यहाँ पे है, और जो बंध गया है सदसद्योन जन्मसु, और उसके अलावा एक और पुरुष है जो बंधन में नहीं फंसा है। उपद्रष्टानुमन्ताच भर्ता भोक्ता महेश्वरः, परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। तो इसी में एक और है परः, परः मतलब परा का एक अर्थ हो सकता है परा जो दिव्य है, परा का दूसरा अर्थ एक और, एक दूसरा है पुरुष परा। उसका क्या, उसका क्या विशेषता है? वो बंधा हुआ नहीं, ऊपर दृष्टा, वो ऊपर से देख रहा है, दृष्टि कर रहा है ऊपर से, बंधन में नहीं फंसा हुआ है। अनुमंता, और वो क्या अनुमति दे रहा है, और वो क्या भर्ता भोक्ता महेश्वर, वो पालन करता है, वो भोग करता है। अभी भोक्ता और भूंगते दोनों में फर्क है। ये भोक्ता मतलब यहाँ पे क्या है कि भूंगते मतलब जो भोग करने की इच्छा करता है, और भोक्ता मतलब स्वभाव से भोग कर रहा है। मतलब क्या भगवान का वो स्वभाव ही है कि वो भोग करते हैं, तो भोक्ता, और वो महेश्वर है। और ये शब्द है स्पष्ट रूप से परमात्मा के बारे में वर्णन यहाँ पे आ रहा है, परमात्मे इति चाप्युक्तो, उक्तो मतलब उनको बताया जाता है, उनका नाम क्या है परमात्मा। और देह है इसमें, वो भी देह में है पर पुरुष परः, वो एक ऐसे पुरुष है जो परः है। तो अभी हमने पहले चर्चा की थी, इसी अध्याय क्या है 18वें श्लोक में आया था हृदि सर्वस्य विस्थितम, तो वही इसका भी स्पष्टीकरण था, वो कौन है? परमात्मा है। अभी परमात्मा ये शब्द का इस्तेमाल भगवद गीता में ये इसी शब्द का स्पष्ट रूप से 3 बार आता है, तो ये दूसरी बार है। इसके पहले 6 अध्याय के 7वें श्लोक में आता है जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयो। तो वहां पे जितात्मना, हाँ, जब व्यक्ति मन को जीत लेता है, उसको नियंत्रण करता है, तो क्या होता है परमात्मा समाहितः, वो परमात्मा तक पहुंच गया है। तो वहां पे परमात्मा के बारे में उल्लेख आता है, पर परमात्मा कौन है यह वर्णन नहीं आया है। यहाँ पे परमात्मा कौन है उसका वर्णन आता है। और एक और बार परमात्मा का वर्णन कहाँ आता है, 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में, उत्तम पुरुषत्वान्य परमात्मे इति उदारता यो लोकत्रयम् आविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वर। वहां पर उसी तरह से एक और पुरुष है, वो उत्तम पुरुष है, उसका नाम क्या है, परमात्मा। तो परमात्मा का वर्णन है, मतलब जो शरीर है उसमें क्या है, एक आत्मा है, दूसरा परमात्मा है। कुछ मायावादी लोग बोलते हैं क्या है कि ये वो उपनिषद की वो आपको सबको उदाहरण पता है, उपमा, कि एक वृक्ष है जिसमें दो पंछी है और एक पंछी उसको खा रहा है फलों को, कभी अच्छे फल मिलते सूखे होता है, बुरे खट्टे खराब स्वाद के फल होते तो दुखी हो जाता है, और दूसरा जो पंछी है उसे देख रहा है, तो देखने वाला पंछी कौन है, परमात्मा, खाने वाला पंछी आत्मा है, जीवात्मा है। तो अभी श्लोक है, अभी उपनिषद में श्लोक कथोपनिषद में श्वेता सूत्रोपनिषद दोनों जगह में आता है ये उपमा, समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशेषोचति मोहियमानः जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशम् अस्य महिमानामिति विशोकः। तो जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशम्, अगर ये आत्मा जो है, ये खाने वाला पंछी है, वो सिर्फ अपना सिर मुड़ता है और जो देख रहा है पंछी उसकी ओर देखता है, तो फिर क्या होता है, उसके सारे शोक चले जाएंगे। तो इसमें उपनिषद में इतना ही बताया गया है कि आत्मा को दृष्टि भौतिक जगत से वो दूसरे भगवान की ओर ले जाए, परम सत्य की ओर ले जाए। तो मायावादी क्या बोलते हैं श्लोकों को, इसी श्लोक में बताया नहीं है पर उसको लेते हैं कि जब ये पंछी दूसरे पंछी की ओर देखता है, दोनों पंछी एक दूसरे के पास आते हैं, दोनों एक हो जाते हैं। वास्तव में ऐसे भी बताया नहीं है, लेकिन बताया कि ये दूसरे पंछी की ओर देखता है तो क्या होगा, सारे मोह से मुक्त हो जाएगा। पर हम देखते हैं कि भगवान ही बताते हैं कि उनका अस्तित्व शाश्वत है, जैसे 15वें अध्याय खाते श्लोक में बताते हैं शाश्वत है अस्तित्व, उत्तम पुरुषत्वान्य। तो अभी ये सवाल आएगा कि ठीक है कि जो आत्मा भी फंस गया है प्रकृति में, अभी आत्मा और परमात्मा जो थे उसके फंसे हुए वो तो परे है, तो आत्मा जो फंस गया है प्रकृति में उससे बाहर कैसे निकलेगा, तो उसका वर्णन अभी अगले 3 श्लोकों में आएगा। तो अभी तो सबसे पहले भगवान बताएगा कि अभी मैंने जो बताया है वह ज्ञान क्या है, उसका सार देंगे पहले। येनं वेत्ति पुरुषं येनं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते न स भूयो विजायते। ये बोलते हैं कि ये ज्ञान अगर समझ जाएगा, येनं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह, जो ज्ञान ने बताया अगर व्यक्ति समझ जाएगा अच्छे से गुणों के साथ, तो गुण क्या है समझ जाएगा उसके साथ, तो सर्वथा वर्तमानोऽपि, तो हर परिस्थिति में वो जीव जी सकता है, न स भूयो अभिजायते, उसका पुनः जन्म नहीं होगा, वो पुनः भवबंधन में नहीं फंसेगा, न स भूयो अभिजायते। इस तरह से क्या बताया जा रहा है कि पुनः अगर व्यक्ति को भवबंधन में नहीं फंसना है तो ये ज्ञान को समझना चाहिए। तो लगभग ये जो है जन्म कर्म जो मैं दिव्य में शुरुआत, उसमें क्या बताया था, आप मुझे समझ जाएगा तो क्या होगा, सिर्फ भौतिक संसार में वापस नहीं आएंगे, उसके साथ क्या होगा, आप मेरे पास आओगे। तो ये क्या है, दो चीजें हैं। अगर हम देखेंगे अगर हम भौतिक आत्मा के ज्ञान को समझ जाएंगे तो भवबंधन से निकल सकते हैं, बस सिर्फ आत्मा को समझने से हम भगवत धाम नहीं प्राप्त हो सकते, भगवत धाम आत्मज्ञान से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, पर भगवत ज्ञान से ही हम भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। हम देखते हैं यह जो भेद है 10वें अध्याय के 3रे और 7वें श्लोक में आता है। 3रे श्लोक में बताते हैं यो माम जिमनादिं च वित्ति लोक महेश्वरम असमूढ समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। गुड। तो क्या है, अगर व्यक्ति समझ जाता है माम अजमनादिं च, मुझे समझ जाएगा तो क्या होगा, एक है कि वो पापों से मुक्त हो जाएगा, पर उसका ही अगला भाग जो है वो वहां पे 7वें श्लोक में बोलते हैं भगवान कि सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः, कि अगर आप समझ जाएंगे तो न केवल आप पापों से मुक्त हो जाओगे पर आप मेरी भक्ति में लग जाओगे। तो दोनों हमको चाहिए, हमको सिर्फ क्या है, कैसे हमको सिर्फ बीमारी से ठीक नहीं होना है, बीमारी से ठीक होना अच्छी बात है, पर बीमारी से ठीक होने के बाद हमको हमारा सेहत जो है स्वास्थ्य है वो पुनः प्राप्त भी करना है। क्या हाथ करके किसको बहुत बड़ी बीमारी होती है, अगर किसी ट्यूबरक्लोसिस वगैरह हो गया है तो अगर मुझे 4-5-6 साल पहले बड़ा ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, 6 महीने हॉस्पिटल में था, 6 महीने कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट ले रहा था, और उसके बाद में डॉक्टर ने कहा अभी ट्यूबरक्लोसिस के जर्म्स है आपके शरीर से चले गए, तो बीमारी नहीं है, पर बीमारी नहीं है इसका मतलब नहीं कि स्वास्थ्य आ गया आपको, अभी 6 महीने आप आराम कर रहे थे कि आपकी बीमारी ठीक बीमारी चली जाए, पर अगर आपको 2 महीने और आराम करेगा रहना पड़ेगा तो आपको शक्ति आ जाए, तो दोनों एक ही चीज नहीं है, एक है जो जो नकारात्मक है वो चल जाना और दूसरा है सकारात्मक आना, तो आत्मज्ञान से नकारात्मक चला जाएगा, आत्मज्ञान से क्या होगा, अगर मैं समझूंगा कि मैं शरणीय आत्मा हूं तो भौतिक चीजों के भोग करने की इच्छा को मैं छोड़ सकता हूं, पर आत्मज्ञान से सकारात्मक भगवान के आकर्षण वो नहीं आएगा, वह आने के लिए दूसरा कुछ करना पड़ेगा, मुझे भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, तो दोनों चाहिए हमको। तो यहाँ पे क्या बताया गया, अगर हम प्रकृति का और पुरुष का समझ जाएंगे तो क्या होगा, न स भूयो विजायते, अब भाव बंधन में नहीं आओगे वापस। तो इस तरह से ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके 4 विधियां भगवान बताते हैं, 3 25वें श्लोक में और 1 36-26वें श्लोक में। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति
केचिदात्मानमात्मना
केचिदात्मानमात्मना
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे
कर्मयोगेन चापरे।
तो ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति, कुछ लोग पश्यन्ति देखते हैं किसने, ध्यान योग से ध्याने केचित, केचित मतलब कुछ लोग, केचिदात्मानमात्मना, तो वो अपने मन को अंदर लेके ध्यान के मार्ग से देखते हैं, और कुछ अन्य कुछ अन्य लोग क्या करते हैं, सांख्येन योगेन सांख्य योग का पालन करते हैं, और फिर कुछ और लोग कर्मयोगेन चापरे, कुछ और लोग हैं कर्मयोग से करते हैं ये। तो इस तरह से भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये सब विधियां हैं, इनमें से भगवान किसी की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, हाँ ये सब विधियां हैं। अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बोले आपको क्या ट्यूबरक्लोसिस आ गया है, तो कुछ लोग ट्यूबरक्लोसिस के लिए होम्योपैथी याद करते हैं, कुछ लोग नेचुरोपैथी करते हैं, कुछ लोग एलोपैथी करते हैं, और फिर बताइए मैं क्या चाहता हूँ आप क्या करूँ, ये सब भी कर सकते हैं पर ये आपको क्या करना चाहिए, यही देखते हैं हम 4th अध्याय में भी ऐसे आता है कि अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं, बोलते हैं कुछ लोग क्या करते हैं 25वें श्लोक में बोलते हैं कुछ लोग देव देवता को पूछते हैं, कुछ ब्राह्मण को पूछते हैं, कुछ योग करते हैं, कुछ ये करते हैं, कुछ वो करते हैं, पर भगवान बोलते हैं आपको क्या करना चाहिए, वो 34वें श्लोक में तद्विधि प्रणिपाते ना परिप्रश्न सेवा, आप गुरु के पास जाओ, गुरु आपको बताएंगे क्या करना चाहिए आपको। तो इसी तरह से भगवान बोलते हैं ये सब मार्ग है आत्म साक्षात्कार के लिए, पर वो किस मार्ग की पुष्टि करते हैं वो अगले श्लोक में आएगा। अन्ये त्वैव मजानन्तः
श्रुत्वान्येभ्योपासते
तेऽपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः। तो अन्ये तो एवं अजानन्तः, तो अन्य कुछ और लोग है एव मजानन्त, ये कुछ जानते नहीं इसके बारे में, श्रुत्वा उस श्रवण करते हैं, अभी श्रवण जो है ये भक्ति का अंग है, श्रुत्वा अन्येभ्य कुछ और लोगों से भी श्रवण करते हैं, अब क्या करते हैं उपासते उपासना करने लगते, पूजा करने लगते, भक्ति करने लगते, और ते पिचाति तरन्त्येव वो भी अतितरन्त्येव वो भी चले जाते हैं, किसके पर जाते हैं मृत्यु मृत्यु के पर जाते हैं, कैसे जाते हैं श्रुति परायण, बहुत सुंदर शब्द है ये, कई बार कहते नारायण परायण, नारायण के परायण होना चाहिए, तो इसके बिल्कुल विरुद्ध है नारायण परायण, कहाँ तक पता है नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विभ्यते, चित्रकेतु महाराज के बारे में बताते हैं, शिव जी पार्वती बता रहे हैं इतना बड़ा शाप दिया फिर भी वो विचलित नहीं हुए, तो नारायण परा नारायण परायण, तो नारायण परायण एक जगह है, पर क्या है भौतिकवादी लोग क्या होते हैं काम क्रोध परायण, हाँ कहा था ये 16वें अध्याय में आता है 12वें श्लोक में क्या है श्लोक अनेक चित काम क्रोध परायण इहंते काम भो अर्थम अन्यायेन अर्थ संचयान आशा पाशा शतैर्बद्धा काम क्रोध परायण, 16वें अध्याय के 12वें श्लोक में आता है काम क्रोध परायण है, तो मतलब क्या है दो बिल्कुल अलग अलग विपरीत है, एक है शुद्ध भक्त जो नारायण परायण है, दूसरे भौतिकवादी लोग काम क्रोध परायण है। तो अभी ये काम क्रोध परायण हम थे पहले, और अभी हम नारायण परायण बनना चाहते हैं, तो कैसे बनेंगे? तो उसकी जो है इधर से इधर जाना है तो हमको श्रुति परायण बनना है। तो अभी हम अचानक नारायण परायण नहीं बन सकते, चाहोगे तो भी। पर क्या हम क्या कर सकते, श्रवण में आसक्ति ला सकते हैं। अगर श्रवण में आसक्ति लाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारी सारी विचारधारा बदल जाएगी, हमारी सारी भावना बदल जाएगी और हम भगवान की ओर आकर्षित हो जाएंगे। तो श्रुति परायण, हाँ।
यहाँ पे 25वें श्लोक और 26वें श्लोक में तुलना करें तो ऐसा लग रहा है कि जो लोग ये नहीं कर सकते 25वें श्लोक का, वो श्रुति परायण हो जाए, ऐसे एक भाव आता है। तो श्रुति परायण को कम क्यों लिखा गया है कर्मयोग और ज्ञान योग की तुलना से, सांख्य की तुलना?
क्या यहाँ पे ये जो श्रुति परायण को कम लिखा गया है और ऐसे कम है तो क्यों है? वास्तव में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कम की कोई बात नहीं है। ऐसे कोई शब्द नहीं आता है कि ये लोग भगवान से केचित अन्य अन्य ऐसे बोले, कुछ लोग ये करते हैं, कुछ लोग ये करते हैं, कुछ लोग ये करते हैं और कुछ लोग ये करते हैं। तो इसलिए इसमें कुछ ऐसा बताया नहीं है कि ये लोग कम है। उसमें एक शब्द आता है अजानंता, वो सब जानते नहीं है। तो जानते नहीं है इसका ये मतलब नहीं, जरूरी नहीं है कि वह इस मार्ग को कम बताया गया है। देखिए कि I'll speak in English, then I'll translate it. That a path can be followed by even the less qualified does not make the path less qualified. क्या है? कोई मार्ग का अनुशीलन कोई कम पात्र के लोग भी कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वो मार्ग कम पात्र लोगों का है। यह हम देखते हैं स्पष्ट रूप से 9वें अध्याय के 32वें और 33वें श्लोक, 33वें 32वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि भक्ति ऐसी है जो पाप योनया है उनका भी उद्धार हो सकता है। मामी पार्थ व्यापाश्रित्य ये भी स्यु पाप योनया स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास देवी अंति परांगते। मतलब कि मेरा आश्रय ग्रहण करोगे तो जो पाप योनि में जन्म लिया है उनका भी उद्धार हो सकता है। और फिर क्या कहते हैं, अगर उनका उद्धार हो सकता है तो फिर किम पुनर्ब्राह्मण पुण्य अत्ताराजन शेस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमाम प्राप्य भजस्वमा। तो फिर आपकी तो क्या बात है, तो ब्राह्मण राजऋषि उनका तो जरूर उद्धार हो जाएगा। तो कैसे है, तो जरूर हो सकता है। ऐसे कैसे, अगर आप जाते हैं डॉक्टर के पास और बोलो आप कैंसर हो गया है, कैंसर हो गया, बाप रे डर जाएंगे, स्टेज 3 में कैंसर, अरे बाप रे स्टेज 3 में कैंसर बढ़ जाएंगे, अभी हमारे पास दवाई है, वो इस दवाई से स्टेज 4 के कैंसर को लोग ठीक कर रहे हैं। तो स्टेज 4 के लोग ठीक हो गए मतलब स्टेज 3 के आराम से ठीक हो सकते हैं, आप चिंता मत करो। तो वैसे ही क्या है, अगर ये बताते हैं कि जो बिल्कुल अजानता लोग हैं उनका भी उद्धार हो सकता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ अजानता अनजान लोग जो अज्ञानी लोग हैं उनके लिए है। नहीं, उनका भी अगर उद्धार हो सकता है तो बाकी लोगों की बात ही क्या है, उनका तो जरूर उद्धार हो सकता है। तो दैट अ पाथ कैन अपलिफ्ट इवन द लेस क्वालिफाइड does not mean that the path is only for the less qualified. वो पाथ इतना महान, वो मार्ग इतना महान है कि वो अपात्र लोग को उद्धार कर सकता है, तो पात्र लोग का जरूर उद्धार कर सकता है। ठीक है, और हम तुलनात्मक रूप से देखना है तो फिर बाकी सब मार्गों के लिए भगवान ने 3 मार्गों के लिए सिर्फ 1 श्लोक दिया और इस मार्ग के लिए पूरा 1 श्लोक दिया। अगर हम उसे तुलना कर दिए तो भगवान ने ज्यादा वर्णन इसका किया है। क्लियर? उनका भी उद्धार कर सकता है। तो हम 18वें अध्याय में देखेंगे कि भक्ति की महिमा क्या है, वो नीचे से नीचे के स्तर के लोग हैं उनको भी उठा सकती है, और वो और उतना ही नहीं, वह हम जो आध्यात्मिक सत्य है उसमें जो परम सत्य है उसके आध्यात्मिक सत्य के सर्वोच्च स्तर तक भी व्यक्ति को ले जा सकती है। तो दोनों तरह से सबसे नीचे तक जाते हैं भक्तिमान और सबसे ऊपर तक भी आता है। तो यह भक्ति की महिमा है। सबसे नीचे तक जाता है वो कहाँ है, हमने देखा अभी 9वां अध्याय का 32-33 श्लोक। पर सबसे ऊपर तक जाता है वो कहाँ है, वो 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में आता है। हाँ, जब ब्रह्म भूत के स्तर पर आ गया व्यक्ति उसके बाद भी आता है, ब्राह्मण प्राप्त कर लिया उसके बाद में मद भक्त लभते परम। तो तो उसके बाद में भक्ति शुद्ध आती है, उसके बाद में भक्त्यामाम हो जाना आती, भगवान की प्राप्ति होती है। तो ये भक्ति की सर्वव्यापी महिमा है कि सबसे नीचे से सबसे ऊपर तक लेके आता है व्यक्ति, क्लियर। तो अभी जो आखिरी विभाग है इसका कि 27 श्लोक चालू होता है, क्या है ये विभाग कि शास्त्र चक्षु या ज्ञान चक्षु। ये जो अर्जुन से सवाल पूछे थे उनका जवाब भगवान ने दे दिया, पर उसके बाद में अभी भी क्या कर रहे हैं, ये सब का समन्वय करके हम ज्ञान की दृष्टि से कैसे देख सकते हैं। वास्तव में ज्ञान चक्षु ये शब्द है, ये भगवान स्पष्ट रूप से इस्तेमाल भी करेंगे इस अध्याय के आखिरी श्लोक में, अंतरम ज्ञान चक्षुषा। तो ज्ञान चक्षु जो है अभी 27वें श्लोक से 35वें श्लोक पर बताएंगे। यावत् संजायते किंचित्
यावत् संजायते किंचित्
सत्वं स्थावर जंगमं
सत्वं स्थावर जंगमं
क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा
क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा
तद्विद्धि भरतर्षभं
तद्विद्धि भरतर्षभं।
तो यावत् संजायते किंचित्, यहाँ पे जो भी सृष्टि में अस्तित्व मिलता है, कोई भी चीज छोटी से छोटी भी क्यों ना हो, वो क्या है, सत्वम स्थावर जंगम। जो भी है इस भौतिक जगत में स्थावर हो या जंगम हो, स्थावर और जंगम ये मतलब हिलने चलने वाले और ना हिलने चलने वाले। पहले भी आया था भगवत गीता अध्याय में था चर और अचर, वह एक चीज है। तो जो भी चीज है वो क्या है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से आई है। तद्विद्धि भरतर्षभ, अभी क्षेत्र क्षेत्र का संयोग का मतलब क्या है कि अभी हमारा शरीर है, अभी आपका शरीर मेरा शरीर अलग है, क्यों है, अभी मेरा आत्मा और आपका आत्मा अलग है और आत्मा के कर्म के अनुसार शरीर की उत्पत्ति होती है। तो यह मेरे शरीर और आपका शरीर अलग है, मेरे शरीर का अस्तित्व क्यों आया, ये आत्मा और शरीर क्षेत्र और क्षेत्र के संगम से आया है। उस तरह से अभी ये जो माइक है, ये माइक में आत्मा नहीं है, ये जड़ है, पर फिर भी ये माइक की उत्पत्ति कैसे हुई, क्षेत्र और क्षेत्र के, क्या कुछ धातु इस्तेमाल हुआ और कोई कामगार आया या कोई मैन्युफैक्चरर आया, उसने उस धातु पे कार्य किया और उसे माइक का स्टैंड आ गया। तो भगवान बोलते हैं जो भी हम देखेंगे वो सब क्या है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संगम से ही उत्पन्न हुआ है। तो इस भौतिक जगत में कुछ भी ऐसे नहीं है जो अपने आप आता है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के से ही। मतलब क्या भगवान बोल रहे हैं कि इस दुनिया में इतने अलग अलग रूप रंग रस स्वाद देख रहे, उससे आसक्त समझो कि अभी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो जब हम प्रचार करते हैं तो कभी कभी प्रवचन देते हैं तो कोई स्त्रियाँ भी आते हैं प्रवचन सुनने को, और कोई दिखने में अच्छे दिख रहे हो तो कभी हम आकर्षित हो जाएंगे कि ये इतने आकर्षक स्त्री है, मेरा प्रवचन सुनने आ रही है, और फिर पर हम समझेंगे कि वास्तव में क्या है, यह एक शरीर है, मेरे ऐसा ही शरीर है और उसमें एक आत्मा है, वो मेरे से ही आत्मा है सिर्फ। तो बेसिक तो क्या है, एक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संगम है। तो हम जब वो ये जो मूल तत्व को भूल जाएंगे और बाह्य रूपों को देखेंगे तो प्रलोभित हो जाएगी, पर जब हम समझेंगे कि मूल तत्व क्या है, यहाँ पे ये एक आत्मा है जो उसको पूर्व कर्म से एक शरीर मिल गया है। तो कुछ लोगों को आकर्षक शरीर मिलता है, कुछ लोगों को इतना आकर्षक शरीर नहीं मिलता है, पर क्या है, वह एक क्षेत्र है जो उसको मिला है। तो वह भी भवबंधन में है, मैं भी भवबंधन में, हम दोनों को एक दूसरे का भवबंधन बढ़ाना नहीं है। तो क्षेत्र क्षेत्र सही होगा सचिन। तो फिर समम सर्वेश भूतेषु
समम सर्वेश भूतेषु
तिष्ठन्तं परमेश्वरम्
तिष्ठन्तं परमेश्वरम्
विनश्यत्स्वविनश्यन्तम्
विनश्यत्स्वविनश्यन्तम्
यः पश्यति स पश्यति
यः पश्यति स पश्यति
समम सर्वेश भूतेषु सर्वेश भूतेषु सब भूत जो है सब जीवात्मा है, समम रूप से देखना है, क्या समान रूप से देखना है, तिष्ठन्तं परमेश्वरम् कि इसके अंदर एक ईश्वर है। अभी ये परमेश्वर इसका संधि का विग्रह दो पद से होता है, एक परमेश्वर का अर्थ है कि परमात्मा को देख सकते हैं और दूसरा है परम ईश्वर, जो ईश्वर मतलब आत्मा भी एक तरह का ईश्वर ही है इस शरीर में, भले हम परमेश्वर नहीं पर हम भी ईश्वर है, वे मैं बोलना चाहता हूँ और उसके साथ मैं बोल रहा हूँ तो उस तरह से मैं मेरी वाणी को नियंत्रण कर रहा हूँ, तो मैं भी एक तरह से थोड़ा ईश्वर हूँ, छोटा ईश्वर हूँ। और यह जो ईश्वर है वो परम है, परम का अर्थ सर्वश्रेष्ठ हो सकता है और परम का दूसरा अर्थ कि परा मतलब आध्यात्मिक होता है। तो मतलब सब लोगों में क्या है, आत्मा है, ये जो समम सर्वेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, जो दिव्य आत्मा है वो स्थित है और क्या है इसका स्वभाव? विनश्यत्स्व अविनश्यंतम्। विनश्यत्स्व शरीर है, विनाशवान है, और उसके परे जो आत्मा है अविनश्यंतम्, उसका कभी विनाश नहीं होने वाला है। और ऐसा से जो देखता है यह पश्यति स पश्यति, यह जो देख रहा है वही वास्तव में देख रहा है। बाकी जो लोग है वो आंखें है फिर भी वो देख नहीं रहे। क्या है, जो हम देखते हैं हम सिर्फ आंखों से नहीं देखते, हम ज्ञान से देखते हैं। अभी एक कोई छोटा बालक है घर में, उसको माँ बोलती है कि देखो घर में कहीं भी कचरा दिखेगा आपको, कहीं कागज का टुकड़ा गिरा होगा तो उसको तुम क्या करना है, फाड़ देना, कचरे डब्बे में डालते हो, तो उसको अच्छा फाड़ के डबा हुआ। तो उस दिन जब पिता घर से जा रहे हैं तो उनकी जेब से 500 का नोट गिर गया, और फिर वो देखा अरे कागज गिर गया, फाड़ रोक, माँ चिल्लाती है क्या हुआ, आप नहीं बताया मुझे फाड़ने के लिए, ये कागज नहीं है, ये लक्ष्मी देवी है, लक्ष्मी देवी तो कागज ही लग रहा है मुझे। तो क्या है, यह पश्यति स पश्यति,
जो समझता है कि साधारण कागज नहीं है, ये वास्तव में
ये लक्ष्मी है, ये पैसा है। तो क्या है, अभी अब बाहर रूप से देखे तो ये कागज दिखेगा, पर ज्ञान से जो देखता है वही सत्य में देख रहा है, यह पश्यति स पश्यति। जैसे भगवान बोल रहे हैं कि अगर हम सिर्फ शरीर को देखेंगे और शरीर के स्तर पर आकर्षित हो जाएंगे तो उस वजह से जानवर भी देखते हैं, तो फिर वह हमारा ज्ञान का चक्षु नहीं है। पर जब हम शरीर के परे आत्मा देखते हैं और आत्मा की समानता देखेंगे, यह पश्यति स पश्यति, और इस तरह से अगर देखेंगे तो उसका प्रभाव क्या होगा, वो अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं। हाँ, क्या ये विद्या विनय संपन्न के समान ही है? हाँ, काफी हद तक समान है, और कि उसमें बताया गया है कि सबको समान रूप से देखना है। तो वो श्लोक का भाव, अगर भाव एक ही है कि सबको समान रूप से देखना है, पर संदर्भ हम देखेंगे तो यहाँ पे जो टेक्निकल कैटेगरीज है क्षेत्र और क्षेत्र के उसके दृष्टि से बताया गया, और वहां पे जो है उसके पहले अगर देखते हैं वहां पर बताया गया कि आप शरीर के परे आत्म तत्व को देखो, तो उससे मतलब भाव एक ही है। अच्छा, एक और श्लोक आता है इस तरह से, सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ देश बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। छठे अध्याय का नौवां श्लोक भी वही है, समान रूप से सबको देखो, पर वो किस तरह समान रूप से देखो, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग भाव है। यहाँ पर क्षेत्र और क्षेत्र की दृष्टि से आता है, पर ऐसा पर इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दोनों एक ही है। फिर उसके बाद में अभी इस तरह से जो देखता है उसका प्रभाव क्या होगा, समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम् नहीनस्त्यात्मनात्मानम् ततो याति परां गतिम्। समम पश्यन् समान रूप से देखता है व्यक्ति सर्वत्र सब जगह पे, क्या समवस्थितम ईश्वरम्, वह देखता है कि सब जगह में सब लोगों में आत्मा स्थित है। एक्चुअली ये श्लोक है, कजाचार्य बोलते हैं कि आत्मा का उल्लेख करता है परमात्मा उल्लेख करता है, दोनों का उल्लेख करता है, देखते कि सब लोगों में वही स्थित आत्मा है परमात्मा है, कुछ भेद नहीं है लोगों में। तो न विनश्यत् सो न हिनस्ति आत्मनात्मानम्, ऐसा व्यक्ति अपने मन से खुद का पतन नहीं करेगा। मतलब क्या कि अगर कोई मेरा अपमान करता है, साधारणता क्या होता है भौतिकवादी व्यक्ति का, तुम मेरा अपमान करेंगे तो मैं उससे बड़ा तुम्हारा अपमान कर दूंगा, कहते क्या मैं तुम मैं क्या बोले मैं तुम शेर तो मैं सवा शेर, फिर मैं उसका दुगना ज्यादा करके आपको दे दूंगा, तो वो भाव होता है। तो भाव से सिर्फ वो जो संघर्ष है और बढ़ जाता है। तो क्या है, अगर हम देखते हैं कि वास्तव में एक भक्त विजय प्रभु हमारे पुरुषी मिनिस्टर है, बता रहे थे कि वो एक बार अमेरिका में पुरुषी कर रहे थे, और वो एयरपोर्ट में थे पुलिसिंग कर रहे थे, एक निग्रो व्यक्ति था, आजकल उनको आजकल के समाज में निग्रो नहीं बोलते, उनको बोलना है वो निग्रो से जाति भारत उसको अफ्रीकन अमेरिकन बोलते हैं, ये अफ्रीकन अमेरिकन। तो वो आदमी को उन्होंने किताब दिखाया और किताब देखने उसने नाक में भुक्का मार दिया और वो नीचे गिर गए और वो सिर घूमने लग गया, मैं उसको किताब दिखाने का प्रयास कर सीधा मार दिया। तो अभी क्या है, साधारण इच्छा होती है मैं तुम्हें मार सकता, मैं तुम्हें मार सकता हूँ, पर तभी वो बोले क्या हुए पता नहीं, वो ये श्लोक कहते उपदृष्टान मंता च, तो बोले कि भगवान जी उसके हृदय में है, भगवान ने इसको इस तरह अलाउ किया है, उन्हें सहन करना चाहिए। और फिर वो तुरंत उठ गए और वो व्यक्ति देख रहा था मैंने वो मार दिया। आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू सम बुक, मैं आपको किताब दिखा जाता था, मुझे नहीं चाहिए, चिल्ला दिया उसने। पर वो बोल गया किताब नहीं लिया, चला गया। पर क्या हुआ, दूसरे दो तीन व्यक्ति थे वो देख रहे थे क्या हो रहा है कि कोई गिर गया किसको मार दे तो लोगों को उत्साह आया था क्या होने वाला है। बोले बाकी लोगों ने देखा कि मैं कितना ये कितना विनयता से बात की। बोले कि आप इतना विनयता से किताब बात कर, हम किताब क्या हम जाना चाहते हैं। और बाकी तीन लोगों ने वहां पर किताब ली थी। तो क्या है, जब हमारा अगर हम देखते हैं कि वास्तव में भगवान ही सब परिस्थिति नियंत्रण में है, तो फिर हम उचित पद्धति से उसका रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया कर सकते हैं। तो इसी तरह हम मन के द्वारा पतित नहीं, हीनस्य आत्मनात्मानम्। जब भगवान ऐसे भगवान का हाथ नहीं देखते हैं तो फिर क्या होता है, हम भौतिक स्तर प्रतिक्रिया करते हैं। तो ऐसे कभी हो सकता है कि हमें ऐसे नहीं कि हमेशा कोई आक्रमण करे तो हमें सिर्फ सहन कर लेना है। कभी कभी हमें कोई मंदिर में कोई मंदिर को ध्वस्त करने को आता है तो हमें भी शस्त्र इस्तेमाल करने पड़े तो कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने मायापुर में बताया था कि आप गन्स भी रख सकते हैं, भक्तों को वहाँ पे बंदूक चलाने में प्रशिक्षण चाहिए। तो ऐसे नहीं कि सब जगह पे अहिंसा ही रखना है हमको, पर महत्वपूर्ण क्या है कि जो उचित कार्य है वो उचित कार्य करना चाहिए। और क्या उचित है अलग 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 होता है, पर अगर हम भगवान नियंत्रक है देखते हैं तो फिर नहीं नस्ति कि हमारे आत्मा से उसका ये मार पतन नहीं होगा। ततो याति परांगतिं, तो और मायापुर मंदिर जो था तभी कुछ वहां पे जो गुंडे आ गए थे उसमें श्लोक आते वो विग्रहों को उद्वस्त करने वाले थे। तभी तो भक्ति राघव महाराज थे वहां पे, और भक्ति राघव महाराज जो थे ना उनको पहले से पोलियो था, अभी भी वो तो कैसे कैसे चलते। तो बहुत सब लोग ग्रंथ दिखा के आ रहे थे, तो क्या हुआ वो अपने जब उन्होंने देखा कि विग्रह पे आक्रमण करने चले गए तो वो अपने क्रचेस को लेके आ गए और उनके जो उसको को आक्रमण करने लगे। तो अभी वो ये देख के कि ये व्यक्ति तो चल नहीं सकता फिर भी ये आक्रमण करने आ गए तो वो आश्चर्यचकित हो गए, और उनके हाथ में कुछ हैंड ग्रेनेड थे तो ग्रेनेड उनको फेंक दिया। तो क्या हो गया, तो उनका जो पैर पहले से पोलियो से खराब था वो पैर पर ग्रेनेड लग गया और वो पैर पूरा विस्फोट हो गया। तो फिर उसके बाद में वो बेहोश हो गया और बहुत बड़ा हादसा हो गया। पर बाद में जब उनको पूछा गया, उनका इंटरव्यू बैक टू वर्ल्ड उनका इंटरव्यू आया था, तभी बताए थे कि वास्तव में कि ये जो मेरा पहले पैर था वो पहले से ही पूर्वजन्म के पापों से वो खराब था, पर जो खराब पैर भगवान की सेवा में त्याग करने का मौका मिल गया मुझे, ये मेरा भाग्य है। और उससे कम से कम विग्रह में आक्रमण तो नहीं हुआ, क्योंकि क्या हो गया वो विस्फोट हो गया तो वो लोग भी डर गए, पुलिस वगैरह आई तो चले भाग गए वहां से। तो क्या है, यहाँ पे भक्त कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो क्या है, नहीं नस्ति आत्मनात्मानम्, कि हम इस तरह से उचित कार्य कर सकते हैं जिससे कि हम बंधन में नहीं फंसेंगे पर बंधन से बाहर निकलेंगे। तो ये जो ज्ञान चक्षु है इसके बारे में हम और चर्चा आगे कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद्गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय।